ओम शांति। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत तपस्वी महान विभूतियों की क्लासेस आप सबको कल से मिल रही हैं। अभी हमारे बीच में आदरणीय अनीता दीदी विराजमान हैं। आपका रहने का स्थान तो चंडीगढ़ पंचकुला है, लेकिन आप पूरे इंडिया में ही सेवाएं अपनी देते रहते हैं। आप 79 से ज्ञान में हैं और 87 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे आदरणीय दादी चंद्रमणि जी और अचल दीदी जी की जो पंजाब जोन के इंचार्ज रहे हैं और दादी जी संस्था की ज्वाइंट चीफ रही हैं, तो उनकी पालना में आप पले हैं। यज्ञ की मर्यादाएं, नियम, धारणाएं आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत प्यार से भी लव और लॉ का बैलेंस रखते हुए भी आप कुमारियों की ट्रेनिंग भी कराते हैं। ट्रेनिंग की फैकल्टी हैं, अभी भी आप नीचे कन्याओं की ट्रेनिंग चल रही है, उसके लिए आए हुए थे तो हमने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप एक क्लास आगरा वालों को भी पांडव भवन में जरूर करा के जाएं। हमारा पंजाब जोन का सोनीपत रिट्रीट सेंटर है, उसके आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। जो भी भट्टी की क्लासेस व विंग्स के कार्यक्रम बहुत वहाँ चलते रहते हैं और ट्रेनिंग्स भी, तो आप सब कोऑर्डिनेट करते हैं उन कार्यक्रमों को। और मुझे ये बताते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा हर्ष हो रहा है कि जिस स्थान पर मैं 98 से सेवाएं दे रही हूँ, वो स्थान आपका अलौकिक जन्म स्थान है। कौन सा? सिरसा, हरियाणा। ऐसी महान विभूति हमारे जोन से ही नहीं, हमारी स्टेट से ही नहीं और हमारे शहर से, कोई किसी का बच्चा डीसी बन जाए और कोई टीचर हो या कोई उस गांव का हो तो क्या कहते हैं, हम इनके गांव के तो हमें भी ये बताते हुए हर्ष होता है। आप यज्ञ की आधार स्तंभ हैं और हमारे, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आपके आसपास रहने का भी बहुत मौका मिलता है। चंडीगढ़ में मैं देखती थी, एक बार किसी बहन ने आपसे पूछा कि दीदी आप इतनी तपस्या और इतने अच्छे क्लासेस ये सब आप कैसे करते हो, कब आपको समय मिलता है? चंडीगढ़ में तो बहुत सेवाओं की रूपरेखा है। तो दीदी ने बोला कि दोपहर को रेस्ट छोड़ के, मतलब उसके लिए बड़ों को ये नहीं कहना मैं कहीं क्लास करानी है या तपस्या करनी है, कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, लेकिन अपना दोपहर का रेस्ट छोड़ के या रात को ज्यादा जाग करके एक्स्ट्रा, मतलब अपने ही उसी टाइम में से सब कुछ मैनेज करना है। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा सा शेड्यूल होता था, शायद बीच में थोड़ा सा मैं समझती हूँ, अनीता दीदी जरूर बता देंगे, मतलब बहुत स्पेशल वहाँ का एक वातावरण पूरे भारत देश में मशहूर है। अचल दीदी जी उस समय रहते थे तो वो भी एक अलग बात है। आप स्पार्क विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, तपस्या भी आपकी बहुत फेवरेट है, पांडव भवन में भी आप आके घंटों तक बाबा के कमरे में झोपड़ी में जब भी फ्री होते हैं नीचे से तो आकर के तपस्या करते रहते हैं, क्योंकि इसकी ना तो कोई समय सीमा है ना कोई उम्र की सीमा है। इसलिए ऐसी महान हस्ती को आज अपने बीच में पाकर हम बहुत अपने आप को गौरवमय महसूस करते हैं। आपके आगमन से चेहरा हमारा खिल गया, थोड़ा सा कष्ट तो आपको हुआ होगा लेकिन गौरव हमारा बढ़ गया, क्योंकि आप नीचे से ऊपर आए हैं और कुछ पाबंदियां भी हैं, 8 बजे से पहले नीचे उतरना भी जरूरी है, इसलिए क्लास का समय थोड़ा सा अर्ली किया है। फिर हम मेडिटेशन इस क्लास के बाद थोड़ी देर कमेंटी योग भी करेंगे, फिर आज आप सबका सुखधाम में डिनर भी है, वो आपको समाचार बाद में बताते हैं। फिर से अनीता दीदी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है अनीता जी।
ओम शांति। बिंदु दीदी हमारे से भी महान है, इनसे हम बहुत सीखते हैं। जो खुद जितना ग्रेट होता है दूसरे को ग्रेट नजरों से देखता है। बाकी तो सबको बाबा पाल रहा है और अपने प्यार में चला रहा है। उसको नाम तपस्या दे देते हैं, बाकी ऐसा कुछ कड़ा है नहीं। तपस्या तो मनोरंजन है हमारी, बाबा के प्यार में खेल रहे हैं, पल रहे। आज का टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छा चूज किया है, राजयोग के द्वारा विकर्म विनाश। यूं कह सकते हैं, योग बल के द्वारा विकर्मों का विनाश। राजयोगी हम सारे बनते हैं और हमें मालूम है इससे हम चेंज होते हैं और इतना ज्यादा चेंज हो जाते हैं कि लोगों ने जमाने में एक हवा फैला दी है, ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ ना जाना, क्या करेंगे, जादू लगा देंगे, ऐसा कोई सुरमा डालेंगे, बस आप इस दुनिया के नहीं रहोगे, घर बार छोड़ दोगे। तो ये जादू क्या चीज है, बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, लोग जब जादू जादू कहते हैं कि यहाँ कोई भेड़ बकरी थोड़े बनाया जाता है। हाँ, जादू जरूर है। लगा आप सबको जादू लगा, किस किस के ऊपर जादू लगा है, सब पे लगा, तभी तो भाग आए हो, है ना, अभी तक भी भागते रहते हैं। मैं पहली बार जब मधुबन आई थी घर से भाग के आई थी और यहाँ ही बाबा से मिली थी, इसी हॉल में, इसी जगह बाबा बैठे थे और पहली बार ही बाबा से मुलाकात करते टाइम बाबा ने वरदान दिया था। बाबा ने पूछा पहले मेरा हाथ पकड़ के, बच्ची ठीक है, नहीं तो बाबा ऐसे पूछते तो नहीं है नॉर्मली, बच्ची ठीक है, पहली बार मिल रही थी। मैं कह नहीं बाबा, बहुत बंधन है, क्योंकि अंदर बंधन का कष्ट था, क्यों रोकते हैं मेरे को, क्यों भाग के आई थी, तो बाबा को बोल दिया है। मुझे लगा मैं भगवान को शिकायत लगा देती हूँ, नहीं बाबा बहुत बंधन है। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के, दृष्टि दे के मेरे को बोला, बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो और शक्ति शस्त्रधारी होती है, शक्ति को कैसा बंधन। बाबा ने मुझे मेरा स्वमान याद दिला दिया, मैं तो स्वमान से नीचे उतरी हुई थी ना, तभी तो बाबा को बोला बंधन 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 का यहाँ चल रहा था। बाबा ने याद दिलाया, बंधन बंधन मत बोलो, याद करो मैं शिव शक्ति हूँ और शक्ति शस्त्रधारी होती है, शक्ति को कोई नहीं बांध सकता। तो बाबा के उस वरदान ने जीवन में बहुत काम किया और फिर जो वरदान ने काम, तो वरदान ने किया था, पहले ही भाग के आए थे, वापस जाके बहुत डांट पड़ी, बहुत बुरा भला बोला, पर वरदान ने भी काम करना था। जितना वो डांटे, जितना वो विरोध करे, हम और पक्के होते रहे। उनको तो पूरा ही पक्का हो गया कि ब्रह्मा कुमारियों ने इसको कुछ कर दिया, कुछ खिला दिया हमारी अच्छी भली बेटी को, तो अब तो गई काम से, ऐसा वाला समझा। परंतु अब हम अपने विषय पर आते हैं कि ये जो जादू जादू बोलते हैं, वास्तव में हमारा राजयोग बड़ा करामाती योग है, ये परिवर्तन करता है। जो बोला ना कि विकर्म विनाश, क कोई कोई भाई बहने क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे पता चले कि विकर्म विनाश हुए हैं, कुछ दिखता तो है नहीं, कोई स्लेट पे लिखा हुआ नहीं है सामने दिखे कि ये वाला पाप लगा हुआ है तेरे को, अब तूने आज योग लगाया, ये देखो पाप मिट गया। फिर कोई रजिस्टर दिखता रहे ना, कोई स्क्रीन पर आता रहे डाटा, तो डाटा आता है जैसे बैंक में इतना पैसा डाला, इतना बढ़ गया, इतना निकाला, इतना घट गया, डाटा आ जाता है। अब यहाँ कोई डाटा आता नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कैसे समझ में आए हमने पूरी रात भट्टी करी, हमने मधुबन जाके भट्टी करी। मालूम तो पड़े ना 50 पाप नाश हुए हैं कि 100 पाप नाश हुए हैं, हुआ क्या है, रिजल्ट क्या आया, मालूम कैसे पड़े? कैसे मालूम पड़ता है? खुशी बढ़ती है। अच्छा, हो सकता है कोई बात में आपकी खुशी बढ़ी पर आपके कारण कोई और दुखी हो गया। कैसे पता चले मेरा पाप नाश हुआ है कि बना है? हाँ जी, मन हल्का हो जाएगा, बाबा से योग लगा रहेगा। तो समझो योग लग रहा है तो समझो मेरे कुछ पाप नष्ट हो गए हैं। कितने हुए हैं ये तो नहीं पता ना। और कोई निशानी? राइट बोला, विकर्म विनाश माना संस्कार परिवर्तन। अब संस्कार परिवर्तन और विकर्म विनाश अगर दोनों को हम इकट्ठा लेकर के चले तो इसके लिए कहा गया है कि राजयोग के द्वारा या योग बल के द्वारा विकर्म विनाश। अब थोड़ा सा मैं आपको पजल करूंगी, देखना पजल होना नहीं पर करूंगी जरूर, फिर भी टेस्ट है आपका। क्या राजयोग अकेला हमारे पाप नाश करता है? अगर करता है, राजयोग माना देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद कर, है ना? यही है ना राजयोग, देह भूलो, देह के संबंधी भूलो, देह के धर्म भूलो, आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, बाकी कुछ याद नहीं आए, तो उससे विकर्म विनाश होंगे। अगर इतने काम से विकर्म विनाश होते थे तो जब शिव बाबा आए तो शिव बाबा हम सबको ये क्यों नहीं बोला कि सब चलो, 9 लाख बच्चे सेलेक्ट कर देता, चलो सभी घर बार छोड़ो, जंगल चलो, एक एक झोपड़ी बनाओ, कंदमूल खाओ, कमाना बंद, निभाना बंद, सब कुछ बंद, अलग अलग दूर दूर जंगल में, और सब भूल जाओ, दे भूलो, दे के धर्म भूलो, आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, बस। तो हम लोग अब तक संपूर्ण बन नहीं गए होते? नहीं, हिसाब किताब चुक तू, वहीं जंगल में बीमारी शिमारी आती, योग से ठीक कर देते, भूखे रहते, चुक तू हो जाते, वहां ही सहन करते, कोई फैशन नहीं, कोई देखो राजयोग से विक्रम विनाश है ना, तो उसमें आत्माओं का क्या लेना देना? योग लगा 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 के ऐसा करंट मिलता, बस आत्मा शुद्ध। फिर योग बल से विक्रम विनाश करने हैं या आत्माओं से हिसाब किताब चुकतू करके विक्रम विनाश करने हैं? फिर योग की जरूरत तो नहीं। स्ट्रांग है माता। हाँ भाई कुछ बोल रहे हैं। राइट, तो मैं इसको शब्द यूज करूं कि सिर्फ राजयोग से नहीं लेकिन राजयोग बल कर्म योग से विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि राजयोग ऐसे नहीं, राजयोग नहीं करना, भले 21 दिन भट्टी करो, भले सारी रात जागो, 14 साल तपस्या कराई बाबा ने, वो भी एक सब्जेक्ट है। 7-7 दिन बाबा भट्टी में बिठा देते थे, दिन रात कमरे से बाहर भी नहीं आओ, किसी को देखो भी नहीं, देदारी की शक्ल नहीं देखना, कोई को पत्र नहीं लिखना। यहाँ भी कहीं कहीं हम बठिया कराते हैं, मोबाइल रख लेते हैं, फोन छोड़ो, सब भूलो, एक बाप को याद करो। वो याद करते करते क्या होगा, कैसे पता चले ये याद विकर्म विनाश तक पहुंची है कि नहीं? नहीं तो हम बोलते हैं ज्वालामुखी योग करो, बीज रूप योग करो, उस योग से पाप नाश होंगे। खाली योग लगाए से पाप नाश होते तो मैं 21 दिन 40 दिन 365 डेज सारे रिश्तेदारों से टूट के छूट के बाबा 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 और शरीर छोड़ दूं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की अधिकारी बन जाऊंगी। उसको अब कर्म में हमें प्रयोग करना है, तो कर्म क्षेत्र हमारा दर्पण है। कर्म क्षेत्र ये भी राइट बात है, उससे खुशी बड़ी हल्कापन आया, परंतु वो खुशी और हल्कापन आपकी एक इनकम है। आपने योग लगा के खुशी कमाई, आपने योग लगा के हल्कापन कमाया, प्रेम कमाया, सहनशीलता कमाई, त्याग कमाया, तपस्या कमाई, वैराग कमाया, आपके अंदर सुख आया, आनंद आया। अब लोगों को इसका प्रूफ चाहिए कि आप योगी होकर के सुखदायी हुए हो, क्योंकि हमारे जो विकर्म हैं ये पिछले सब जन्मों का एक उधार है। विकर्म किसे कहते हैं? जब हमने कोई ऐसे कर्म किए किसी विकार के वशीभूत होकर के, जिसमें दूसरी आत्माओं ने दुख पाया, जिसमें समाज का कुछ नुकसान हुआ, जिसमें प्रकृति का कुछ हमने नुकसान कर दिया, उस सारे को विकर्म कहेंगे। चाहे वो मैंने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट कोई पर क्रोध किया दुखी हो गया, चाहे मैंने इनडायरेक्ट किया, काम विकार में सामने वाला दुखी नहीं हुआ था, उसको तो प्यार बोलते हैं लोग, मोह में भी सामने वाला दुखी नहीं हुआ था, उसको प्रेम बोलते हैं, माँ का बड़ा प्यार है बच्चे से, लेकिन दोनों ने सामने वाली आत्माओं की शक्तियों को नष्ट कर दिया। एक कामी किसी काम का नहीं रहता है, उसकी अपनी सहन शक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी अपनी त्याग तपस्या की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। हमने कहीं डायरेक्ट दुख दिया, कहीं इनडायरेक्ट हमने लकड़ी का व्यापारी बन के जंगल काट डाले, जंगल के जंगल प्रकृति का इम्बैलेंस हो गया। हमने कहीं बिल्डर बन करके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बना डाली, सारी नेचर को हमने इम्बैलेंस किया। ये कोई डायरेक्ट विकर्म नहीं है, हमें मालूम नहीं पड़ता हमने कोई पाप किया क्या। हम तो कहेंगे हमने एक मक्खी नहीं मारा, क्या किया हमने तो, और ही जो पैसा कमाया था बिल्डर बन के, जो पैसा कमाया था हमने जंगल काट करके, हमने तो गरीबों को दान किया, हमने तो हॉस्पिटल खुलाए, हमने तो इतनी गरीब लड़कियों की शादियां कराई। डायरेक्ट तो पाप दिखा नहीं हमको, लेकिन ज्ञानी होती है, समझ आती है तो मालूम पड़ता है ये सब पाप था। अब पाप क्या है? पिछले 63 जन्म हो सकता है हमने 100,000 आत्माओं की बद्दुआएं कमाई हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई कोई कारण से मैं कारण बनी उनकी अनकंफर्टेबल लाइफ का, उनके दुख का, किसी भी रूप से कारण बनी। अब 84वां जन्म मेरे को मिल गया, मैं योगी हो गई। अब मैं तो योगी हो गई, लेकिन जो सब दुखी हुए ना वो मेरा उधार है। मैंने उन 100,000 लोगों का सुख छीना था, दुख देना माना सुख छीन लेना, सुख छीनना माना जैसे किसी से 100,000 रुपया उधार ले लिया, उसको कहेंगे छीन लिया, या छीना बोलो या उधार लेना बोलो। अब मैंने किसी से 100,000 रुपया उधार तो ले लिया, लेकिन चुक तो कैसे होगा? मैं उसको एक एप्लीकेशन लिखूं कृपया मेरा उधार माफ किया जाए, चुप तू हो जाएगा, उसके चरण पकड़ लूं, कृपया मुझे माफ कीजिए, प्रार्थना करूं, आरती पूजा करूं, व्रत रख लूं, गंगा नहा के आ जाऊं? कौन सी विधि है उधार चुक्त होने की? कोई विधि नहीं है, एक ही विधि है, जो लिया सो चुकाओ। जितना जल्दी चुकाएंगे उतना कम, और जितना लेट, जितनी बड़ी बड़ी लेट लेट किस्तें, उतना हो सकता है लिया था 1 लाख देना पड़ जाए 2 लाख 3 लाख 4, जितना लेट किया बढ़ता जाएगा ना। ऐसे ही ये दूसरों से सुख ले लिया, हम दुखी क्यों करते हैं दूसरों को? दूसरे का सुख छीनना चाहते हैं, हमें अपना मनोविज्ञान मालूम नहीं है। कोई क्रोध क्यों करता है, रोब क्यों डालता है किसी पर? रोब डाल के गुस्सा करके तो अब मजा आया, अब पता चलेगा इसका, वो एक मजा ले रहा है, दूसरे को दिया सजा, खुद को लिया मजा, अब चुप हुआ ना, अब पता चला ना, इनको भी पता चल जाएगा ना, मैं सच्ची है झूठा, हमने अपना एक तरीके का कॉलर अप कर लिया, नाम कमाया। तो मैंने दूसरे का सुख छीन के खाया, यानी दूसरे का पैसा लेके अपना काम चलाया, अब मुझे लौटाना है। संगम युग पे वो 1 लाख लोग सारे जो जो उनका सुख छीना था, बदले में वो सारे दुख के टोकरे लेके आएंगे वापस, जो उनको दुख मिला था ना, और ब्याज समेत लाएंगे। जैसे जिससे 1 लाख रुपया उधार लिया था, वो बार बार याद दिलाने आएगा, वापिस करो 1 लाख रुपया, वापिस करो 1 लाख रुपया, वापिस करो। और जितनी बार मांगने आया, हमने उसको धक्का मार के उसकी जेब से और पैसा निकाल लिया, तो वो नोट करेगा, और जो धक्का मार के गिराया था उसकी उसकी भी रिपोर्ट हो सकती है लॉ को, उसकी भी सजा साथ में काउंट होती जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, ध्यान देना, भले हम योगी बने हैं, भले हम ज्ञानी बने हैं, अपने परिवारों को याद करो, जो जो लोग हमें दुख देते हैं, भले ज्ञानी बनने के नाम पर बड़ी बनी फिरती है ब्रह्म कुमारी, जरा अकल नहीं है, उसने दुख दिया ये कह के ऐसे ही देंगे ना वापस, और हम क्या करते हैं, चुप करो, जमान जमान के बोलो, भगवान के लिए बोल रहे हो, भगवान बदला लेगा, सजा खाओगे, ऐसे अगर बोल दिया तो हमने उधार वापस किया या वही सीन बनाया, धक्का मार के गिरा के जेब से और निकाल लिया। करना क्या चाहिए था, भले हम सच्चे हैं, भले वो झूठा है, हम ठीक है वो गलत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, वो हमारी पवित्रता में विघ्न डालते हैं, हमें क्या करना चाहिए था? वो बुरा बोले, खाली दुआएं नहीं दी जाती है बहन जी, वो बुरा बोले तुम नालायक, तुम घर का काम नहीं करते हो, तुमने बच्चे बिगाड़ दिए, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? सॉरी, ध्यान रखेंगे आगे से, हम और अच्छा से घर का काम करेंगे, बस आगे से और सुधर के दिखाएंगे, बेशक आपकी गलती ना हो, विनम्र होना होगा, गलती करने वाले को माफ करना होगा, बुरा करने वाले का भला करना होगा, ये है लिया हुआ उधार वापस चुकाना। ज्यादातर परिवारों से जो भाई बहने हमारे पास आते हैं टाइम लेने, दीदी थोड़ी बात करनी है, दीदी थोड़ी बात करनी है, दीदी फलाना ऐसे करता, फलाना ऐसे करता, मैंने कभी ऐसे नहीं बोला वो फिर भी बोलता, मैंने कभी ऐसे नहीं किया वो फिर भी करता, उसने धोखा दिया, वो झूठ बोलता है, वो पीटता है, वो ये करता है, वो ये। ज्यादातर हमारी सारी प्रॉब्लम ये वाली होती है कि हम अच्छे हैं, वो लोग बुरे हैं। अगर ठीक योग लगाया होता तो ठीक योग से सबसे पहला काम तीसरी आंख खुलती है, समझ जागृत होती है कि ये बुरा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने किया था, ये तो सिर्फ लौटाने आया है, ये ले लो जी आपका वापस। जैसे बाबा ने मुरली में कभी कभी कहता कि समझो कोई के पास सड़े गले सेब है, आपको देना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे या नहीं? वो तो सेब दिख गया आपको, सड़ा गला नहीं लेंगे। तो अगर आपने लिया नहीं तो किसके पास रहा, देने वाले के पास रहा। अब ये बात तो जल्दी समझ आ गई, सड़े गले सेब दिख गई फोटो, मैं क्यों खाऊं सड़ा गला सेब, हो गया खाओ ना, उसमें से गंदा पानी निकल रहा है, कीड़े पड़े हुए, और वो ऐसे कहता खाओ ना, ना ना। अगर आपने नहीं लिया तो किसके पास रहा, देने वाले के पास। अब सड़ा गला सेब नहीं लाया, वो सड़ी गली बातें लाया है। अब सड़ी गली बातें अगर आप स्वीकार नहीं करो तो वो किसके पास रहेंगी, वो कैसे रहेंगी। एक बार कहते हैं, मोटा उदाहरण देती हूँ समझ आ जाएगा, महात्मा बुद्ध की कहानी तो सबने सुनी हुई, किस किसने नहीं सुनी हुई कि एक व्यक्ति ने उनको गालियां दिया बहुत, किस किसने ये कहानी नहीं सुनी हुई, ऐसे भी है जिन्होंने नहीं सुनी। अच्छा, बच्चों की कहानी है, बच्चों को सुनाया करते थे कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बहुत बुरी तरह गालियां देने लगा, तुम पाखंडी है, तुम ये है, तुम वो है, तुम वो है, तुम वो है, बोले गया। और महात्मा बुद्ध शांत अवस्था में स्माइलिंग फेस में बैठे, तुम बोलता क्यों नहीं है, जवाब दे, मैं पूछ रहा हूँ, तुम ऐसा है, तुम वैसा है। वो फिर भी मुस्कुराते रहे, कहते तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आता, बोल, कुछ भी बोलता रहा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो भाई, अगर तुम कोई चीज मुझे देने लगे, मैं नहीं लूं, तो वो किसके पास रहती है। कहते इतनी भी अकल नहीं है, मेरे ही पास रहेगी। कहते अच्छा भाई, इतनी देर से तुम मुझे कुछ देना चाहते थे, मैंने नहीं लिया, वो किसके पास रहा, तुम पागल, तुम बुद्धू, तुम पाखंडी, तो कौन हो गया बोलने वाला। तो ताली असली वाली बजाना, असली ताली कौन सी, घरों में जाके प्रैक्टिकल करना। महात्मा गांधी एक बार शिप पर जा रहे थे, तो शिप की डेक पर बैठे थे, दूर एक अंग्रेज बैठा, उनको ऐसे घूर घूर के देखे जा रहा था, गंदी नजरों से, और कुछ लिखे जा रहा था, 10-12-15 पेज लिख के उसको पिनअप करके गांधी जी को पकड़ा के गया। उसमें सारा गांधी जी का नाम गालियां लिखी हुई थी, तुम इतना गंदा आदमी हो। अब गांधी जी ने ऐसे किया थोड़ा सा, और उस पर जो पिन लगा हुआ था तो वो पिन निकाल लिया, पिन निकाल के उस भाई के पास वापस गए, और जाके कहते हैं, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस पिन की मुझे सख्त जरूरत थी, बाकी ये मेरे कोई काम के नहीं है, ये आप रख लीजिए। ये इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग आना, ये है विकर्म विनाश की एक्स्ट्रा कमाई। जैसे उधार चुकतू करने वाले व्यक्ति को बहुत सारी संभाल करनी होती है कि 1 लाख रुपए का उधार है उसके ऊपर, और उसकी इनकम सिर्फ मास की 20,000 है, और उसका खर्चा ही 20,000 हो जाता है। अब 1 लाख कहां से चुकाएगा भाई, अब तुम जितने घंटे काम करता डबल कर, जितना कमाता है डबल कमा, जितना खाता है कम कर, अपनी कंजम्पशन कम कर, करते करते जोर लगा लगा के लौटा दे, क्योंकि कर्ज मर्ज होता है। ऐसे ही जिन लोगों ने हमें दुख दिए, अभी भी दे रहे हैं, उन सबको वापस सुख देना है, वापस प्यार देना है, वापस गलतियां माफ करनी है, तो बहुत सारा प्यार के सागर से प्यार लेना है, बहुत सारा सुख के सागर से सुख लेना है, सर्वशक्तिमान से बहुत सारी शक्ति कमानी है, गुण सागर से बहुत सारे गुण कमाने हैं, गुणों का सागर है, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, दया, करुणा, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, मधुर वाणी, 36 के 36 गुण कमाने हैं। कमाएंगे तो लौटाएंगे, क्योंकि अब आपके पास कड़वी जबान वाले आएंगे, मधुरता लौटा देनी है, आपके पास असंतुष्टि के भंडार लेकर आएंगे ऐसे ऐसे लोग, जिनके लिए आपने सारी उम्र खून पसीना लगाया होगा, हड्डियां तक लगा दी होंगी, वो आपको कहने आएंगे क्या किया मेरे लिए, देख लिया आपको, हम जा रहे हैं घर छोड़ के, अपने पैदा किए हुए बच्चे बोलते हैं ना, जिनके लिए आप जी जान लगाते हैं, आपको बोलते मिलते हैं आपसे तो फलाने के मम्मी पापा अच्छे हैं। एक बच्चा अपने मम्मी पापा को कह रहा था 7000 का बैग लेके दो, स्कूल बैग, इतनी तो हमारी इनकम नहीं है बेटा, सस्ते वाला ले लो। कहता है एक बैग ही लेकर नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया था। ऐसी ऐसी बातें बोलने वाले मिलेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप उनको प्यार लौटाएंगे, आप उनको क्षमा लौटाएंगे, आप उनको नम्रता लौटाएंगे, और उसके लिए सबसे बड़ा काम योग बल करेगा, आपके अंदर एक ऐसा कवच पैदा करेगा जिसमें किसी भी तरह का हर्ट अंदर न जाए। जैसे उधार लौटाने वाले को वेस्टेज बंद करनी होती है, उधार लौटाने वाले को कमाई बढ़ानी होती है, सबसे बड़ी वेस्टेज दुख लेने से होती है। अगर हम अभी तक भी लोगों के व्यवहार से दुख लेते रहते हैं, तो दुख लेने वाला अपने दुख की इनकम बढ़ा रहा है, तो लोगों को लौटाएगा क्या। अगर लोग दुख लेके आएंगे तो वापस दुख दे देंगे, और फिर अगर दुख दिया तो हमारा उधार बढ़ता चला जाएगा, कर्म खाता चुकतू नहीं होगा। बुरा न मानना, बहुत सारे भाई बहने सेंटर पर भट्टी करके जाते हैं, पूरे रात जागते हैं, और घर जाते ही कोई बात में देखा ऊपर नीचे हुआ हुआ, धड़ धड़ लड़ाई करते हैं। वैसे के वैसे बहुत भाइयों की युगले नहीं आती है, बहुत माताओं के युगल नहीं आते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं, भाई जी आप भी आया करो ना, कोई भाइयों की युगल को बोलते हैं बहन जी आप भी आया करो ना, ज्यादातर क्या जवाब मिलता है, पहले ये तो सुधर जाए, ज्यादातर पहले ये तो सुधर जाए, ये यहां आके ओम शांति करती है घर में, देखा करो कैसे ओम क्रांति होती है, भले हंस रहे हैं पर ये सच है। एक बार चंडीगढ़ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की युगल कोर्स करने आने लगी, और 4-5 दिन हुए थे आते हुए, उसको बीच में राखी आ गई, तो राखी पर चीफ जस्टिस को भी बहने राखी बांधने के लिए गई, तो जरूरी बात है, उसको भी कहा भाई जी मैडम तो आपके आती है आप भी आया करो ना, तो वो उसने मालूम है क्या जवाब दिया, कहते देखो ये जा रही है वहां शांति लेने, ओम शांति तो करने लग गई है, पर जब ओम शांति मेरे घर में आएगी ना तब मैं आया करूंगा। अभी सॉरी अभी शांति मेरे घर नहीं आई है, अभी ये ओम शांति करती है। थोड़े दिनों बाद वो भाई जी भी उसके साथ आने लगे, कहते अभी शांति मेरे घर आ गई है तो मैं भी आ रहा हूं। ये सिर्फ ये मत समझो कि ये सेवा का विषय है, सिर्फ सेवा का विषय नहीं है, लेकिन ये विकर्म विनाश के साइन बोर्ड्स हैं। विकर्म हुए हैं संबंधों में, तो संबंधों में जो कटुता है उसमें मिठास आने लगे तो समझो विकर्म विनाश हो रहे हैं। हम सिर्फ ये कहकर ना छोड़ दें, इनको ना पता नहीं है भगवान आया, इन्होंने ना ज्ञान नहीं समझा, इनको क्या पता हमें क्या मिला। ओके, उनको पता ही नहीं है आपको क्या मिला है, तो ये कसूर किसका? उनका कसूर है भी, हमने तो बहुत समझा के देख लिया दीदी वो आते ही नहीं है, मैंने कितनी बारी कह के देख लिया भगवान आया हुआ है, कब जागोगे नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, अब तो चल पड़ो, नहीं इनके कान पे जू रेंगती है। बहुत बार प्रोग्राम्स होते हैं, दीदियां बोलती है कि अपने परिवार वालों को लेके आना, अपने पड़ोसियों को लेके आना, ज्यादातर का जवाब क्या होता है, दीदी बहुत कह के देख लिया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आता, कसूर किसका? कोई नहीं सुनता। आपके क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप उनके दुख की आवाज नहीं सुनते। उनके अंदर भले अपने विकारों से दुखी हैं, लेकिन हमारे भक्त है, हमारी प्रजा है, हम पूर्वज हैं, आत्मा रूप में भाई हैं, और हमारे फर्ज के रूप में हमारे बच्चे हैं। हमने उनके विकारों से जो जख्म हुए हैं उनको, उनकी आवाज नहीं सुनी, हम उनके विकारों का उत्तर विकारों से देते हैं, उनके अभिमान का उत्तर क्रोध से देते हैं, उनकी जेलसी का उत्तर नफरत से देते हैं, उनके धोखे का उत्तर हम उनसे संबंध तोड़ देते हैं। अगर उन्होंने झूठ बोला हम क्रोध करेंगे, उन्होंने हमारे से नफरत किया हम संबंध तोड़ लेंगे। जब तक ऐसा करते रहेंगे हम लाख गाने गा लें भगवान आया है, वो नहीं मानेंगे। इसलिए जरूरत है एक कुर्बानी की, बुरा करने वाले के साथ भला करना, ये कुर्बानी चाहिए। जैसे देश जब गुलाम हुआ था, गांधी जी ने नारा लगाया था कि देश के लिए आजादी के लिए कुर्बानी दो, बहुतों ने लोगों ने अपने धन दौलत सब दिया था देश के लिए। जब आवाज लगाई गई थी तो लोगों ने खून दिया था, गर्दनें कटा दी थी। आज विश्व को आजादी की जरूरत है, हम भगवान के बच्चों को कर्म की कुर्बानियां चाहिए। कर्म क्षेत्र बताता है कि कितना योग बल कमाया है। ये क्यों नहीं बढ़ता हमारा योग बल? क्योंकि एक वहम एक धोखा हो गया हमें। कौन सा वहम कौन सा धोखा? कि हम बहुत तीर मार चुके हैं, बहुत कमाई कर चुके हैं, कई बार थोड़ा थोड़ा कर लिया होता ना, थोड़ा थोड़ा तो लगने लगता है वाह रे मैं चूहे को मिली हल्दी की गांठ समझ बैठा, अब मैं भी दुकान लगाता हूं, बड़ा व्यापारी हो गया हूं। हमने ब्रह्मचर्य धारण किया, बताती हूँ कहाँ कहाँ वहम और धोखा होता है कि हम बहुत कमा चुके हैं। हम दिल से पवित्र बने ब्रह्मचारी, हम शुद्ध अन्न खाते हैं, सच में हम कोई के हाथ का बाजार का यहाँ का वहां का नहीं खाने चाहते, हमारी जीभ भी कंट्रोल हो गई है। हम अमृत वेला उठते हैं, हम रोज मुरली क्लास जाते हैं, हम नमः शाम करते हैं, हम चार्ट लिखते हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हम सादा कपड़ा पहनते हैं, मैरिड माताएं भी व्हाइट पहनती है, भाई लोग भी सिंपल सिंपल हो गए, हम सेंटर पर बहुत सेवा करके जाते हैं, और हमें लगता है हमने बड़े तीर मार दिए, क्योंकि एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो ये किस स्टैंडर्ड का ब्राह्मण है हम इन्हीं बातों से मापते हैं। अमृत वेला रोज करते हो, मुरली रोज सुनते हो, बाहर का तो नहीं खाते हो, पवित्र रहते हो, नमः शाम करते हो, चाट लिखते हो वगैरह वगैरह, भंडारी में डालते हो, हाँ बहुत डालते हैं, यज्ञ सेवा दीदी जहां कहे जान हाजिर है हमारी। समटाइम्स एक धोखा हो जाता है कि मैं ना बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी योगी हूं, हमारे घर के लड़ते रहे बोलते रहे, मैंने कब परवाह किया ही नहीं, जहां जाना आ जाते हैं, बच्चों को भी छोड़ के आ जाते हैं। अब विचार करना, हम पवित्र बने अगर घर में से एक चला बाकी नहीं चले, पवित्र बनते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली क्लास सेवा जो कुछ भी करते हैं, इस सारे से हमारे संबंधियों को क्या मिला जो ज्ञान में नहीं चलते, क्या मिला? जिन माताओं के युगल नहीं चले वो तो उनका तो जीवन वो कहेंगे गया, हम तो गए काम से। जिन भाइयों की युगले नहीं चली वो तो समझेंगे हमारे तो सारी खुशियां ही खत्म कर दी, हमारा घूमना खाना खत्म। आप अमृत वेला उठते हो वो सोना चाहते हो, कितने शोर कर रहे हो, आप मुरली क्लास आते हो वो कहेंगे नाश्ता लेट होता है, हमारे घर के काम रुकते हैं, आप सादे कपड़े पहनते हो हमारी नाक कटती है, ये शादी में बिना गहने बहने आ गई, आप बाहर का नहीं खाते हो हमारे संबंध खराब हो, दुनिया की आवाज है ना। हमने उनकी कुछ सुविधाएं छीनी है। एक डॉक्टर भी जो समझदार होता ना, उसने पेशेंट को बेशक शफा देनी, वो शुभ चिंतक है, उसने पेशेंट का कैंसर ठीक करना, फोड़ा ठीक करना, उसके लिए उसने ऑपरेशन करना, उसके लिए उसने चीरा लगाना, उसके लिए उसने सुई लगानी है, करता तो भला है पर उसको मालूम है सुई लगाने से जो बीमारी का दर्द है बढ़ेगा, चाकू लगाने से जो फोड़े में ऑलरेडी दर्द हो रहा है ना उससे बढ़ेगा, चीरा लगाने से पेट काटेगा, उसने अंदर से कैंसर वाला अंग निकालना है ताकि मौत ना हो, पर जो चाकू लगाना है उसका दर्द कैंसर के दर्द से बहुत ज्यादा है। तो समझदार डॉक्टर क्या करेगा, सुई लगाने से पहले टिंचर लगाएगा, पता ही नहीं चले सुई लगी हा? और चाकू लगाना है ना एनेस्थीसिया लगाएगा, बेहोश कर देगा। अगर ये नहीं करे तो एक डॉक्टर और एक कातिल में कोई अंतर नहीं, वो कातिल माना जाएगा, भले वो लाख डिक्लेयर कर दे मैं तो भला करता हूं मैं तो डॉक्टर हूं, पर समझदारी वाला डॉक्टर बनो ना। हम भी समझदारी वाले डॉक्टर बने, डॉक्टर जरूर है, हम जानते हैं इन आत्माओं के अपने कर्मों का फल है, इन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, अपने विकारों से दुख पा रहे हैं, राइट, पर आप तो डॉक्टर हो, अगर आप किन्हीं कर्मों से, बेशक सत्य कर्म है राइट कर्म है, आप इन कर्मों में कोई पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके कर्मों से अगर कोई दुख पा रहा है तो यहां आपको उनकी कुछ सुविधाएं छीनने के बदले में कुछ बड़ी बड़ी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जैसे डॉक्टर ने सुविधा छीनी ना, अब यहां उसने फोड़ा काटा जखम, अब वो सुविधा देगा वापिस, उसमें पट्टा लगाएगा, दवाई लगाएगा, उसके लिए पेन किलर देगा, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट देगा, कुछ देगा ना बदले में, तब वो डॉक्टर माना जाएगा, यूं ही काट के थोड़े भेज देगा। तो हमने उनके वो फोड़े काटे हैं, सुविधाएं छीनी है, अब बदले में बहुत कुछ देना होगा। एक पवित्रता की मदद करने के लिए बाबा ने मुरलियों में यहां तक कहा हुआ है, अगर तुमको उन थूक भी हाथ में लेनी पड़े ना, बोलो हम आपके बर्तन मांजेंगी, हम आपके पांव दबाएंगी, हम आपकी थूक तक हाथ में लेंगी, बस हमें पवित्र रहने दो, मतलब क्या है बाबा का कहने का, अगर एक सुविधा छीनी है तो जबान मीठी रखो, व्यवहार अच्छा रखो, सत्कार करो, उनके खर्चे कम करो। एक तरफ तो पवित्र बने, उनकी सुविधा छीनी, दूसरी तरफ हम गहने कपड़ों की लड़ाई करते हैं, देरानी जेठानी की लड़ाई करते हैं, सास बहू की लड़ाई करते हैं, प्रॉपर्टी की लड़ाई करते हैं। हम कहते हैं हमारा हक है, पूछने आते दीदी मेरे जेठ ने ना हमारे सारा हक रख लिया, और हमारे युगल कहते जाने दे तुम, मैं कैसे जाने दूं, मैं तो केस करूंगी। क्या फायदा आपके पवित्र बनने का? वो क्या मानेंगे आप में ब्रह्मचर्य की ताकत आई है? ब्रह्मचारी त्यागी होता है, ब्रह्मचारी तपस्वी होता है, एक की यादों में मगन होता है, ब्रह्मचारी में मोह नहीं होता। तो ये रियल नहीं, आधा अधूरा ब्रह्मचर्य है, बाय फोर्स है। लेकिन जो रियल धारणाएं हैं उससे गुण पैदा होते हैं। गुण आए, किसी का बुरा करके भला करने की शक्ति आए, तो समझो योग से विकर्म विनाश हुए। नहीं तो एक होता है ऐसी आग जो सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी जल जाए, ज्वाला। एक है दिए जैसी आग, उस पे आपका एक कप चाय भी नहीं बनता। दिए जितनी आग पे आप खाना पकाने लगो, आप लकड़ी जलाने लगो, क्या जलेगा? वो आपके कमरे की भी रोशनी पूरी नहीं देता। तो ठंडा मिठा योग है जो ऐसी शक्ति नहीं आई है कि दूसरों की गलतियां माफ कर सके, नफरत करने वाले को प्यार दे सके, बुरा करने वाले का भला कर सके, दुख देने वाले को सुख दे सके, जो दादियों ने किया, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। अरे कटार लेके मारने वाला आया, मार डालूंगा। बाबा के अंदर प्यार का सागर, कातिल सामने खड़ा है। इतना योग बल उन्होंने कमाया, शिव बाबा प्यार के सागर से इतना प्यार भरा, कातिल को कह रहे हैं आओ मेरे बच्चे, आओ बच्चे, बाप तुम्हें याद कर रहा था। इतना प्यार का शावर पहुंचा, कटार गिर गई, चरणों में गिर गया, मारने आया था, मरने को तैयार हो गया। ओ मेरे बाप जी, मुझे मार डालो मेरे बाप जी। ये क्या था? आप समझते हो शायद शिव बाबा आ गया था इसलिए ऐसा हुआ था। ब्रह्मा बाबा के तप का बल था, मम्मा के तप का बल था। जो मम्मा हापुड़ में हंगामा, अमृतसर में हंगामा, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, दिखाओ, मिलाओ, दरवाजे तोड़ रहे हैं, आतंकवादी आए हुए हैं, बहने रोक रही हैं, कहीं मम्मा को जाके तंग नहीं करे, तंग नहीं करे। आखिर दो लोग सीढ़ी से चढ़ गए मम्मा के कमरे में, बुरा भला बोलेंगे, निकाल देंगे, ये कर देंगे इनको, वो कर देंगे। सामने मम्मा प्यार से खटिया पर बैठी, शांति की देवी, आओ बच्चे, आओ आओ। मम्मा उठ के कहती है खटिया पे बैठो। वो इसको देखे, उसको देखे, इसको देखे, उसको देखे, नहीं मां जी, नहीं मां जी, आप बैठिए। कहो बच्चे कुछ कहना है? नहीं मां जी, ऐसे ही मिलने चले आए थे। अगर मम्मा को, मम्मा को तो सारी आवाजें सुनाई दे रही थी कि हमने क्या बिगाड़ा, हमें मारने आ रहे हैं, हमने इनका क्या लिया, क्यों दुखी कर रहे हैं, हम किराया दे के मकान में रहते हैं, हम इनका कुछ बिगाड़ते नहीं, इनके घर रोटी खाने जाते नहीं, ये क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं? कोई क्यों नहीं, नादान बच्चे हैं। क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, ये जितना आया है उतने विकर्म विनाश हुए। यानी अवगुण मरे, विकर्म विनाश माना अवगुण कितना मरा, नफरत कितनी मरी, वैर विरोध कितना मरा, पुरानी यादें कितनी मरी। 20 साल पहले भी कोई ने गाली दिया था, आज सामने आता कहते उसको तो देखते ही सिर दर्द हो गया, उसके घर गए थे उसने ऐसे बोला था, अब तक भी याद है 20 साल बाद भी। तो ठंडा मीठा योग है, ऐसी ज्वाला जलानी है जिस योग से विकर्म विनाश हो। वो योग ये नहीं आप कितने घंटे बैठे, वो योग है, चेक करना होता है, जब योग किया मैंने देह भूली, ये फीलिंग समाप्त हुई कि ये स्त्री है या पुरुष है, ये चमड़ा मैं हूं, मैं ज्योति हूं, ये ऊपर क्या लगा पड़ा है, अजीब सा लगे, बाबा अपने लिए शब्द यूज करते तो दुम लटका पड़ा। दादी प्रकाशमणि जी कहा करते थे कि बाबा ने हमें आत्मा 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 का इतना पाठ पढ़ाया, जो आज दिन तक मुझे ये सोचने में जोर लगता है कि मुझे कोई स्त्री का शरीर लगा है। क्या हम ये भूल पाए हैं कि मैं मम्मी हूं और पापा हूं? घर जाते ये तो नहीं बोलने लग जाते, मेरा बेटा होके ये करता तो राजपूत की औलाद, फिर ये बोलता हम बानिया लोग ऐसा नहीं कर सकते। अभी तक याद है राजपूत और बानिया, अभी तक याद है मैं मम्मी मैं पापा। विकर्म विनाश माना, संबंधों के खिंचाव समाप्त, बेटा बेटी मम्मी पापा, वो जो खींच होती है ना, ये राजपूत बानिया ये जाट पंजाबी, ये क्या होता है, नथिंग। चंडीगढ़ में एक सिख भाई ज्ञान में चला, पहले नास्तिक था, पक्का नास्तिक, कहते गुरुद्वारा तक भी या तो जाता नहीं था, जाता था तो वहां सिर्फ पाठी का मजाक उड़ा के आते थे, भगवान को नहीं मानता था। बाबा के यहाँ आया, ज्ञान लॉजिकल अनुभवों वाला, अच्छे अनुभव हुए, एकदम बाबा का पक्का बच्चा बन गया। पहली बार मधु बनाया, आत्मा आत्मा बहुत अच्छा समझ आ गया, परमात्मा ज्योति स्वरूप बहुत बढ़िया प्यार अनुभव करने लगा बाबा का। तो मधुबन आया, शांतिवन था तब, तो वापिस आके उसने अनुभव सुनाया कि मैं एक जगह खड़ा था तो एक साउथ इंडियन भाई आया, कहते मुझे ध्यान से देखने लगा, पगड़ी है दाढ़ी है, तो कहने लगा भाई साहब आप सरदार है ना? कहते मैंने मुस्कुरा कर कहा नहीं भाई साहब। वो फिर से ऐसे देखने लगा, भाई साहब आप सरदार ही तो होते ना पंजाब से, जो पगड़ी पहनते हैं दाढ़ी रखते हैं। मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं सरदार नहीं हूं। अच्छा तो फिर आप कौन है? कहते मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमार हूं, सरदार था अभी नहीं हूं। ये है ज्ञान, समझ आ गया। ज्ञान बल जब बनता है तो व्यवहार परिवर्तन होता है, वो है विकर्म विनाश। ज्ञान बल बनेगा तो जाति भाषा देश आयु पोजीशन सबसे निकलेंगे, संबंधों की फीलिंग से निकल जाएंगे। फिर माताएं दीदियों के आगे आके रोएंगी नहीं, दीदी क्या करूं, भोग लगवाऊं, बेटी का मेडिकल में हो जाए, बस दीदी उसके बाद तो उसका रिश्ता कर देना, उसकी शादी अच्छे से घर में हो जाए, सुखी रहे, फिर मेरे से जितनी मर्जी सेवा करा लेना, बेटी सुखी रहे, दीदी बच्चों का ध्यान तो रहता ना, बच्चे सुखी रहने चाहिए। बहन जी भोग लगाए, आपकी बेटी का MBBS हो जाए, फिर अच्छे घर में शादी हो जाए, उसके लिए भी बहन जी भोग लगाए। इसको कहते हैं विकर्म विनाश हो गए, इतने योग लगाए आपने। विकर्म विनाश यानी बेटी के दुख का असर आपको ना आए, आपको लगे नहीं मैं माँ हूं, इसकी माँ तो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा माँ शिव बाप की संतान है, हम तो आत्मा भाई भाई है। अगर इसको कुछ दुख आ रहा है तो इसके कर्म का फल आ रहा है जो इसी को भोगना है। जैसे दो बहने दो भाई पड़ोसी पड़ोसी, उसको दुख आता है हमें मालूम होता है, इसके कर्म का फल है, उसकी जंजीर में हम बंधे नहीं। हाँ निभाएंगे, उसके लिए खर्च करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसका एडमिशन कराएंगे, ज्ञान में नहीं चले रिश्ता कराएंगे, पर उनके दुख में दुखी उनके सुख में सुखी नहीं होंगे। ये है विकर्म विनाश का लक्षण। कर्म नहीं छोड़ेंगे लेकिन युद्ध के मैदान में तीर खा के मरेंगे नहीं, गम के तीर खाते हैं संबंधों से, गम का तीर अभी तक लग रहा है तो बाबा से रिश्ता जुड़ा नहीं। विकर्म विनाश उस स्थिति से शुरू होते हैं जहां जिगर से आवाज आए, मेरा बाबा, बाकी सब तेरे, बाबा के अलावा कोई मेरा नहीं। तब जिगर से ये नहीं निकलेगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरा पापा है, ठीक है, ओके, बेटे की एक्टिंग, बेटी की एक्टिंग, मम्मी की एक्टिंग, पापा की एक्टिंग निभाना है, ओके, पहले से भी अच्छा निभाएंगे, प्यार से, सहयोग से, संतुष्टि से, मुस्कुराहट से, जो है तुम ले लो, अपने को कोई चाहिए नहीं, कुछ नहीं, डिस्टर्ब होके नहीं। विकर्म विनाश माना डिस्टर्बेंस खत्म, संबंधों का खिंचाव खत्म, तेरे मेरे की दुश्मनियां खत्म, छोटे बड़े की फीलिंग्स, मैं बड़ी हूं ना, पूछते नहीं हो मेरे को, विकर्म हो रहे हैं या विनाश नहीं होंगे, जहां बड़प्पन की फीलिंग है, बाबा ने कहा हुआ है, ध्यान रखो। राजयोगी बन के, ब्राह्मण बनने के बाद कोई और विकर्म ना हो, अगर विकर्म हुआ बाप का बनने के बाद, उस विकर्म से नाम बदनाम होगा, आपके कारण से बहुत लोग बाबा का बनने से वंचित हो जाएंगे, और जो लोग वंचित होंगे उनका दोष आपके ऊपर आएगा। इसलिए कहा कि ब्राह्मण बनने के बाद एक विकर्म का ज्ञान तो हम सबको रटा हुआ ना, है ना, एक विकर्म का 100 गुना हिसाब है। 100 गुना मीन्स क्या, आत्मा और कमजोर होती जाती। कईयों को लगता है कि ज्ञान में चले ना, शुरू शुरू तो बहुत नशा था, बहुत चेंज आया, बहुत अच्छा लगता था, कोई दुख में दुखी नहीं होते थे, अभी तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसा लगता वहीं के वहीं खड़े हैं। 10 साल पहले जितना गुस्सा आता था उतना आज भी आ जाता है। 10 साल पहले अगर किसी की बात पर दुखी होते थे आज भी हो जाते हैं। 10 साल पहले अगर कोई चीज की इच्छा सताती थी आज भी सताती है। 10 साल पहले अगर सुबह उठ के नींद आती थी अभी भी। 10 साल पहले अगर जलेबी खा के जीभ में पानी आता था, मुंह में अभी भी आता है जलेबी देख के पानी। भले हमने छोड़ दिया बाजार का खाना, दूसरा खा रहा हो, अभी भी मुंह में पानी आता है। विकर्म विनाश माना कर्म इंद्रिय जीत, विकर्म विनाश माना संबंधों के लगाव से मुक्त, विकर्म विनाश माना अभिमान मुक्त, विकर्म विनाश माना आलस मुक्त, ईर्ष्या द्वेष मुक्त, मुक्ति है ये, विनाश हो रहे हैं ना। तो इसलिए योग को, योग लगाना नहीं है, योग बल बनाना है। बहुत स्थानों पर आजकल हम देखते सफेद बत्ती होते ही, जो योग कर रहे होते ना सारे, योग में क्या करना था, देह भूल जाने थे, दुनिया भूल जाने थी, एक के प्यार में मगन, जल्दी से कुछ काम याद ना आए, जल्दी से कुछ बातों में बुद्धि ना जाए, ऐसे लगे देह में आना मुश्किल हो रहा है, आवाज में आना मुश्किल हो रहा है, कहना ना पड़े मौन रखना भाई, भट्टी में मौन हो जाए। ये है अंदर आत्मा कमा रही है, आत्मा की कमाई बढ़ रही है, तो समझा जाए ये कर्ज लौटा सकती है। अंदर सुख बढ़ जाए, किसको देखने का दिल नहीं करे, अंदर बाबा ऐसा दिखे, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद सिंधु, बार बार अंदर से आवाज आए, पाना दबा लिया और कुछ चाहिए नहीं। विकर्म विनाश माना इच्छाएं खत्म, विकर्म विनाश माना केवल देने की भावना और कामना, प्यार लेते जाओ, सुख लेते जाओ, सहयोग लेते जाओ, रिस्पेक्ट लेते जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे किए का नाम भी तुम ले लो। बहुत भाई बहने सेवा करके अगर दीदी ने औरों की तो ताली बजवा दी, आपकी ताली बजवाना भूल गई दीदी, तो खैर नहीं दीदी की, मैंने इतना किया मेरा नाम नहीं लिया, और उसने तो ऐसे ही किया जरूसा, और उसके लिए तो महिमा करती रही, वो पैसा ज्यादा देता होगा इसलिए कलंक एक और लगा दिया हमने। वो बड़े घर का आदमी है ना, बट वीआईपीओं को पूछा जाता है यहाँ पे, वो तो परचांस दीदी भूल गई, ब्रेन है ना, ब्रेन का सब्जेक्ट है, तो हमने सेवा किस लिए की थी कि दीदी स्टेज पर बैठ के मेरे गुण गाए, इसलिए सेवा की थी। तो सेवा से भी विकर्म विनाश होते हैं, ज्ञान से भी होते हैं, योग से भी होते हैं, धारणाओं से भी होते हैं, जिस बात से हमारे अंदर बल जमा हो जाए, दुआओं का बल है, समझ का बल है, यादों का, बाबा की यादों का बल है, धारणाओं के लिए जो मेहनत करी, गालियां खाई, उसका बल है, भंडारी में जो अपनी बचत कर करके धन डाला, बल है, जो हड्डियां लगाई सेवा के लिए, वो बल है। लेकिन वो बल तब बनता है जब जब समर्पण भाव होता है। सेवा किया बदले में कुछ नहीं चाहिए, धारणाओं का भी नाम और मान नहीं चाहिए, धारणाएं करके भी हमें लगता है कोई माने तो सही मैं कितना ग्रेट हूं। इसलिए एक सूक्ष्म गति की बात 5 मिनट और सुनाती हूँ, जिससे ठीक समझ आए विकर्म विनाश, गुहे गति का सब्जेक्ट है, मोटी भाषा नहीं है। इस ब्राह्मण जीवन में जितना खतरा पाप कर्मों से है, उतना ही खतरा दीदी को मालूम है, बाकियों को मालूम है, एक मिनट बाकियों को बोलने दो, जितना खतरा पाप कर्मों से है उतना ही खतरा पुण्य से भी है। पुण्य से क्या खतरा है? क्योंकि पुण्य करके अभिमान आता है, और हम पुण्य की रसीद मांगते हैं। जैसे कोई जगह पैसा दिया होता है ना, लोगों को ये भी आदत है, दान किया रसीद मांगते हैं कि पता चले किया, दान किया तो फैन पे भी नाम लिख दो मैंने दिया, कुर्सी पे भी नाम लिख दो मेरा दिया हुआ, रसीद मांगते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं। तो इधर पुण्य किया, पवित्र रहे, शुद्ध अन्न खाया, और अंदर द्वापर कलयुग की आदत है ना कि 10 रुपया भी चढ़ाया तो माइक पे आना चाहिए, तेरी अरदास, फलाने की अरदास, है ना, गुरुद्वारे में मंदिर में ये आवाज लगाते हैं, तो हमें लगता है सारे अड़ोसी पड़ोसी शहर वाले सब कहें वाह रे वाह, तुम शुद्धन खाते हो, तुम पवित्र बने हो, तुम योगी बने हो, तुम बीके बने हो। अगर तो लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया तब हमें लगेगा ये लोग ठीक हैं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा और ये उल्टा बोला तो हमें लगेगा ये लोग गलत हैं। और लोगों को गलत समझना ही हमारी गलती वहीं से शुरू हो जाती है। गलत नहीं है, बिचारों को समझ नहीं है, और समझ ना होना कोई गलती नहीं होती है। तो वहां से ही हमारा अच्छे कर्म का अभिमान का डब्बा भरना चालू हो जाता है, वाह रे मैं, और हाय रे वो, हर मेरे से नेक्स्ट गलत और मैं ठीक। और कोई कोई नए नए ब्राह्मण जल्दी सेवा करने लगते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कोई को हड्डी सेवा का चाव होता है, कोई को धन सेवा का भाव होता है। तो दीदियां तो दया स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अब 7 दिन का कोर्स अभी हुआ ही नहीं था, झाड़ू लगाना पोछे लगाना, दीदी कहेगी शाबाश भाई तो लिखा के जाना, तो बड़ा अच्छा आते ही सेवा करने लग गया, कमाल है। उसको ज्ञान कितना समझ आया पता नहीं, पर ये भाषा बड़ी समझ आ गई, तू बड़ा अच्छा, कमाल है भाई, तेरे जैसा तो कोई आया ही नहीं। उसको ये बाजा ज्यादा बज रहा है अंदर, योग भी कर रहा है ना। हाँ भाई दीदी कहती मैं बहुत अच्छा हूँ, बाबा आपका शुक्रिया आपने अपना बना लिया। क्यों? कोई तो है मिला दुनिया में जो कहता है तू बहुत अच्छा है, घर में तो सारे ही बुरा कहते थे। थोड़ा पुण्य किया था साथ साथ खा लिया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 50 पैसे का झाड़ू पोछा किया था 1 रुपए की महिमा खा गए, 50 पैसे का उधार और चढ़ गया। बाबा ने कहा हुआ है महिमा मिले स्वीकार मत करो, ये प्रभु प्रसाद है जो गुण आपको मिला है, प्रभु ने आप पर कृपा की जो अपने दर पर झाड़ू लगाने के योग्य समझा, वरना तो उसको क्या घाटा है झाड़ू लगाने वालों का। मुझ नाचीज को उसने यूज तो कर लिया, इस मिट्टी के पुतले को इतना तो योग्य समझा, इस माइक पे बैठ के तू उस हरि के गुण गाले। मैं कहूं बारे मैंने कितनी अच्छी क्लास कराई, सारा खाता खाली, कच्चा फल खाया, पेट भी खराब और स्वाद भी नहीं आया। इसलिए विकर्म विनाश की इच्छा रखने वाले महिमा ठुकराना सीखो, जहां महिमा होने लगे आपके कर्म की भाग जाओ। कभी अपने नाम के तालियां बजवाने की कामना मत करना और उस कामना को लेके गीत गाने मत आना। आजकल गीत गाने वाले ब्राह्मण बहुत है, 5,000 की सभा में 1,000 जरूर मिलते हैं। दीदी मैं गीत गाऊं, मैंने बहुत अच्छा लिखा है। क्यों? कोई एक ने गाया था बाकी सब ने ताली बजा दी। एक ने गीत गाया उसकी ताली बज गई, अब बाकियों को गुदगुदी हो रही है मेरी भी ताली तो बजे, और मुरली से 4 लाइनें तो कोई भी लिख लेगा, अब हमारी क्लास से पोयम तो कोई भी बना देगा। हाँ AI से बन जाती और हम आके सुना देते। सिर्फ उतनी सी बात नहीं है। हाँ दीदियां रिक्वेस्ट करे भाई प्लीज कोई गाओ ना, वातावरण बन जाए ना, आपका गला बहुत अच्छा था आओ ना गाओ। दूसरा कहे नहीं मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ ना दीदी, मेरा रख दो ना प्लीज। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 50 पैसे की यहाँ योग की शक्ति कमाई थी, ज्ञान की शक्ति कमाई थी, 1 रुपए की खाके चले गए। और कहे मधुबन में इस बार जो मजा आया क्या बताऊं, मैंने जो गीत गाया कम से कम 100 लोगों ने बोला बहन जी मजा आ गया जो आपने गीत गाया था, और इस खुशी से वो घर जा रही है जी, इस बार की मधुबन की भट्टी मेरी सफल हुई। विकर्म विनाश हुए या थोड़ा सा और डब्बा भर गया, अभिमान जमा हुआ। डोंट माइंड ओनली गीत गाने वालों पे नहीं कह रहे, डोंट माइंड ओनली गीत गाने वालों पर नहीं, हर कर्म पर लागू होती है ये बात। चाहे आपने 4 कड़छी भोजन डाला, चाहे आपने यहाँ थोड़ी सी झाड़ू लगाया और साउंड वाला भाई कहता है भाई आपके जैसा भाई तो कभी आया ही नहीं जो रोज झाड़ू लगाए, उसका भी अभिमान आने का चांस है। तो उस चीज को हम समझें, एक तरफ सुकर्म उसका पलड़ा चेक करें, दूसरी तरफ कहीं अभिमान जमा हो रहा है, कहीं लोभ जमा हो रहा है, कहीं मोह जमा हो रहा है। अपने बच्चों का मोह तो निकल गया, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों में आपस में दोस्तियां, फुलानी माता जी वहां मिली थी ना उसके बाद से तो हम सदा इकट्ठे जाते हैं, और उसके बेटे के जन्मदिन पे मैं गई थी, मेरे बेटे के जन्मदिन पे वो आती है, इतने गिफ्ट लाती है दीदी क्या बताएं, ये ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा है। क्या समझा विकर्म विनाश को, क्या समझा? ऐसे भोले ब्राह्मण मत बनो, ये देह अभिमान बढ़ रहे हैं, ये सत्संग नहीं हो रहा है, ज्ञान भूल रहा है, बाबा भूल रहा है, देहधारियों की यादें बढ़ रही हैं। आंख बंद करूं खाली बैठूं बाबा चमकता है या बातें चमकती है? बाबा चमकता है तो सदगुण आएंगे, बातें चमकती हैं तो वैरायटी रिजल्ट है, वैरायटी। इसलिए टेक इट सीरियसली, आत्मा सिमटती जाए देह भूलती जाए, देहधारी भूलते जाए, अकेलापन अच्छा लगे, मीठा लगे, एंजॉय करे अकेलेपन को। यहां भी दोस्त और सखियां चाहिए, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, नक्की चलना तो भी तू, म्यूजियम चलना तो भी तू, क्लास में बैठना तो भी तू मेरे पास। एक दूसरे को कमेंट मत करना, सारी चेकिंग अपने करनी है कि तो आई दीदी ने कहा था ना फलाने, तुम ऐसे ही कर। नो, ये भी विकर्म हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए पुण्य कर्मों को का भी अभिमान त्यागना है। नेकी कर दरिया में डाल, बदी कर कह डाल, सब अच्छे कर्म गुप्त कर डालो। छोटे से छोटी भूल से तोबा तोबा बचो, छोटे छोटे लगाव, छोटी छोटी ईर्ष्या, छोटी छोटी नफरत, छोटे छोटे दुख, छोटा छोटा माइंड करना, नहीं, आई हैव नो माइंड टू माइंड। अब केवल सुख आनंद जमा करो, केवल प्यार प्यार, रिगार्ड रिगार्ड, हर एक के लिए, सबके लिए समान भावनाएं, आत्मा भाई। देह दिखे नहीं, कोई स्मार्ट है, कोई सुंदर है, फील ना हो, आत्म सितारे चमके, धन का खिंचाव नहीं, संबंधों का खिंचाव नहीं, उसके लिए योग लगाओ। ठीक है, ठीक है। हमारा पूरा ईश्वरीय जीवन का सब्जेक्टिव विकर्म विनाश है। हर अव्यक्त मुरली जो समझाती है हमें, अवगुण छोड़ गुण धारण करो, वो सारा विकर्म विनाश का नॉलेज है। ठीक है, अवगुण मिटना, गुण धारण होना, और अपना और दूसरों का सबका जीवन आसान होते जाना, अपने कारण से पर उसका भान ना आए, जितना ज्यादा से ज्यादा लगता जाए मैंने कुछ नहीं किया, बाबा आया करके गया, जितना ये फीलिंग बढ़ती जाएगी उतना समझो विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा करता, नहीं जी हमें नहीं आता, हम क्या करते, बाबा करता, बाबा बैठा। ठीक है, ओके। एक मिनट एकाग्र होते हैं, ठीक से, ठीक से आत्म ज्योति जगाएं। देह से न्यारी आत्मा एक ऐसी जगती ज्योति जो मस्तक के बीच ऐसा तेज जग रही हूं, जो मेरे दिव्य प्रकाश से पूरा सिर पिघलता जा रहा है, फेस पिघल रहा है, केवल एक प्रकाश चक्र के बीच मैं बिंदु चमक रहा हूं। तेजोमय आत्मा, मेरा दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शरीर को लोप कर रहा है, बाजू प्रकाश बचा, हड्डी मांस गायब है, ऊपरी भाग हार्ट लंग्स स्टमक मिट्टी तत्व समाप्त हो गया, केवल प्रकाश बचा, लेग्स एक प्रकाश की रेखा है बस, हड्डी मांस समाप्त हो गया, एक प्रकाश के घेरे में मैं आत्मा ज्योति बिंदु जगमगा रही हूँ। दूर मेरे सामने जगमगा रहे हैं महाज्योति बिंदु शिव बाबा, उनका दिव्य तेज मुझ सितारे को छू रहा है, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिमान शिव बाबा का शक्तिशाली प्रकाश मुझ आत्म ज्योति में समाता जा रहा है।
किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? अक्सर बाबा हम सबको विकर्म, कर्म, सुकर्म इन सब सब्जेक्ट पर अटेंशन दिलवाते रहते हैं, लेकिन हम अक्सर करके थोड़ा सा अलबेलेपन में आते हैं और बाबा के महावाक्यों को साधारण रूप में ले लेते हैं। लेकिन हम सब के लिए, हम ब्राह्मण जीवन के लिए इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दीदी जी ने आज अपने गहन चिंतन के आधार से रमणीकता और गंभीरता के बड़े सुंदर बैलेंस के द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया है, तो परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनीता दीदी जी का बहुत बहुत आभार है। हम एक हाथ की ताली से दीदी का शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया दीदी जी।